الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم In Arabic language there are two words ایک برکت اور دوسرا کثرت کثرت کے معنی ہے that you have something in a lot of quantity کسی چیز کے مقدار زیادہ ہو پیسے زیادہ ہو On the other hand, means that you have something with the blessing of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, us cheez ke andar apni rahmat utaar dete hain ki wo cheez insaan ki zarurat ke liye kaafi ho jati hai. Isko barakat kehte hain. Aaj jo aam logon ka masla hai. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کثرت کو تلاش کر رہے ہیں اور برکت کو چھوڑ دی ہے آپ عام بندے کو دیکھیں لوگ سوچتے ہیں کہ آج ہماری پریشانیوں کا حل کثرت میں ہے اگر میری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے میرا مال زیادہ ہو جائے گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے میری فیکٹری زیادہ لگ جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ انسان کی غلطی ہے کہ ہم اپنے مسائل میں جو حل ہے وہ کثرت میں دیکھ رہے ہیں اور حقیقت میں کثرت کے اندر حل نہیں ہے ایک بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 1 کروڑ دیتے ہیں وہ چاہتا ہے میرے 2 کروڑ ہو جائیں سوچتا ہے کہ پھر جا کے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کو 2 کروڑ مل جاتے ہیں اللہ اس کی ضرورتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں سوچتا ہے اب 3 کروڑ ہو گئے نا تو اب تو میرے باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ 3 کروڑ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو اور بڑھا دیتے ہیں وہ کماتا 3 کروڑ ہے لیکن قرضہ اس کو 30 کروڑ کا دینا ہوتا ہے تو دل میں بے چینی ہوتی ہے اور ظاہر میں تو بہت کما رہا ہے لیکن اس کے پیسوں میں برکت نہیں رہتی چنانچہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن رات کے اندر خوب کما رہے ہیں لیکن برکت والا رزق نہیں ہوتا اس وجہ سے جو کماتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور دوسری طرف ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ایک بندہ ہے مزدور وہ مہینے کے 20,000 روپے کما رہا ہے لیکن میٹھی نیڈس ہوتا ہے 2 وقت روٹی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس 20,000 میں بھی اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے اندر برکت رکھی ہے حلال پیسے کماتا ہے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے الخاص سے وہ حبیب اللہ کہ جو ہاتھ سے کمانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے تو برکت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں اطمینان عطا فرما دیتے ہیں آج جو ہماری غلط فہمی ہے one big misunderstanding that we have इसलिए वे थिंकिंग के हमारे मसाइल का हल कसरत में, जबकि अल्लाह ताला ने कसरत में मसले का हल रखा ही नहीं है। जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, मुल्क को चलाने वाले हुक्मरान हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारे सपोर्टर्स बढ़ जाए तो बस हमारे मसले हल हो जाएंगे। जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पैसे, तनख्वाह, आमदनी थोड़ी बढ़ जाए, हमारा मसला हल हो जाएगा। जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो सोच रहे हैं कि दो के बजाय तीन फैक्ट्री हो जाए, हमारा मसला हल हो जाएगा। हम गलती करते हैं, मसाइल उस वक्त हल होंगे जब हमारे रिस्क में बरकत आ जाएगी। तो ये बुनियादी बात है समझने वाली कि what is missing from our lives today is not कसरत, it's something which is called बरकत। ये missing ingredient है in our life today, because of which our needs are unfulfilled, हमारी जिंदगी के अंदर सुकून और इत्मीनान नहीं है, और इंसान मुसलसल मेहनत भी कर रहा होता है लेकिन उसकी ज़रूरतें और बढ़ती चली जाती हैं, बरकत की कमी है। अब सवाल पैदा होता है कि ज़िंदगी के अंदर बरकत कैसे आए। तो चंद तरीके हैं, आमाल हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दीन के अंदर बताए हैं, जिनको करने से जिंदगी के अंदर बरकतें आती हैं। सबसे पहली चीज, जब इंसान तकवा की जिंदगी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला कुरान में वादा फरमाते हैं कि हम हमको बरकत अता फरमाएंगे। तकवा कहते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, कि इंसान गुनाह से भी दूर रहे। एक होता है गुनाह नहीं करना, एक होता है गुनाह के करीब भी नहीं जाना, इसको तकवा कहते हैं। चनाचे इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप एक इलेक्ट्रिक वायर देखें 1000 किलोवोल्ट, नाउ यू विल नॉट गो इवन नियर दैट वायर, टच करना तो दूर की बात है, आप उसके करीब भी नहीं जाएंगे, बल्कि आप उसके गिर्द एक फेंस बना देंगे, फिर एक वार्निंग का सिंबल लगाएंगे, फिर कुछ और गार्डन होगा, फिर एक दूसरी फेंस होगी, ताकि एक्सीडेंटली भी इंसान उसके करीब ना चला जाए। वी टेक सो मच प्रिकॉशन व्हेन इट कम्स टू आवर दुनिया, इसी प्रिकॉशन का नाम है तको, दैट यू टेक प्रिकॉशन इन योर दीन, ये दोनों के इंसान करीब बना, करीब भी ना चले। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इनके ज़िना ना करो, वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। कि जो ज़िना करने वाले आमाल हैं उनके जो मुकद्दमात हैं, थिंग्स दैट टेक यू टुवर्ड्स ज़िना, उन चीज़ों के लिए करीब ना जाओ, उनको छोड़ दो। इस चीज़ का नाम तकवा है, दैट यू आर कॉशियस, यू आर केयरफुल, यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, you're putting a safe distance between you and sin. इससे अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं, इल्म में भी बरकत अता फरमाते हैं, औलाद में भी, कारोबार में भी, हर चीज में अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। चुनाचे कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, कि अगर ये शहर बस्ती में रहने वाले लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते तो हम बरकतों के दरवाजे खोल देते, आसमान से भी और जमीन से भी, हम ऊपर से भी देते, नीचे से भी देते। तो हमें पता चला کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر یہی برکت تھی کہ وہ قضاء حاجت کو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق چوہوں کے دلوں سے نکال کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک غزوے پہ صحابہ کرام تشریف لے گئے, 300 کی تعداد تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ سمندر کے اوپر ایک ویل آئی, بڑی مچھلی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے اس ویل کو کھاتے رہے, اس کا گوشت کھاتے رہے. 300 لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے رزق ایسا بندوبست فرما دیا. اللہ وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا, پھر ان کو رزق کی پریشانیاں نہیں ہوتی. یہ نہیں پریشانی ہوتی کہ کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے. تقوی ہوتا ہے نا, تقوی کے ذریعے ان کی آمدنی ہو رہی ہوتی ہے. Earning is not the only way to get money. جو متقی ہوتے ہیں ان کو تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں, پیسے پہنچا رہے ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا, کہا کہ حضرت میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا, اپنے خادم سے کہا کہ ذرا میری پیسوں کا جو میں رقم رکھتا ہوں وہ لے کے آؤ. اس میں سے ایک سکہ نکالا, اس نوجوان کو دے دیا کہ یہ لو تمہارے حج کے پیسے. ایک سکہ. اب اللہ والے تھے, ان کے ایک سکے میں برکت تھی. ہوا یہ کہ اس نوجوان نے ایک سکہ لیا, وہ آگے جانے لگا. پتا چلا کہ جس شہر سے اس کو جانا تھا اسی شہر سے ایک اور کیلاوان تھا, آج کے نہیں جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک اور بندے کو جانا تھا, اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کا اونٹ اس کا سامان سارا موجود ہے, ہمیں بندے کی تلاش ہے, تمہیں آنا ہے تو آ جا. تو وہی فری کے اندر اس کو سارا سفر اپنے شہر سے مکہ مکرمہ تک ہو گیا. وہاں پہنچا تو جہاں اکوموڈیشن تھی وہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ ایک بندہ پہلے سے تھا بیمار ہو گیا, بیک آؤٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی گنجائش ہے, تو لو جی وہاں کا رہنا کھانا پینا وہ بھی فری کے اندر ہو گیا. پھر وہاں سے آگے جو حج کے ارکان تھے, عرفہ, منا, مزدلفہ, وہ سارا اسی گروپ کے ساتھ کر لیا. اب واپسی کا سفر تھا تو اسی اونٹ پہ جس پہ گیا تھا اسی سے واپس آ گیا. واپس پہنچا تو پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا کہ حضرت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حج کروا دیا. اور فرمایا کہ حضرت آپ نے جو ایک سکہ دیا تھا اس کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت نے فرمایا کہ لو واپس کر دو, اسے واپس لے. تو جب برکت ہوتی ہے تو ایک سکے کے اندر پورا حج ہو جاتا ہے. جب برکت نہیں ہوتی تو انسان کروڑوں کما رہا ہوتا ہے لیکن اس کو وہاں جانے کی توفیق بھی نہیں ملتی. قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جب ایک زمانہ ایسا آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ جب صرف مسلمان ہوں گے روئے زمین کے اوپر, اور چونکہ مسلمان ہوں گے کفر نہیں ہوگا, تو بہت برکتوں والا ماحول ہوگا. ایمان والے لوگ ہوں گے, اتنی دنیا میں برکتیں चीजें आएंगी क्या किस बात का में आता है कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान की बरकतों को खोल के रख देंगे। एक गाय होगी उसमें से जो दूध निकलेगा वो पूरे शहर वालों के लिए काफी हो जाए। एक गाय का दूध इतने लोगों के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह ऐसी बरकत रख देंगे, क्यों? क्योंकि गुनाह नहीं होंगे, तकवे वाला माहौल होगा। चनाचे हम अपने वाकियात बड़ों पे बड़े तो ये बात समझ में आ जाती है कि उनकी जिंदगी के अंदर तकवा था, अल्लाह तक ने खूब बरकत उनके रिस्क पर की थी। हजरत कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, शायद नाम सुना आप लोगों ने, बहुत बड़े आलिम दीन साउथ एशिया के, वेरी बिग स्कॉलर, जिन्होंने दारुल दियोबंद की बुनियाद रखी। वो मदरसे के अंदर पढ़ाते थे और किसी ने उनको एक वक्त का विषय डाला था, वो चाहता था कि वो अपने मदरसे को छोड़ दें और मेरे पास आ जाए, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना शुरू कर दें। और यूनिवर्सिटी के अंदर जाहिर की बात है तनख्वाह भी ज्यादा होती है मदरसा, तो उसने लालच के तौर पर हजरत से कहा कि हजरत आपको तो पता नहीं यहाँ एक रुपये दो रुपये तीन रुपये मिल रहे होंगे, आप मेरे पास आ जाए मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ये उस वक्त की बात है जब इंसान में 1 रुपये का गुजारा हो जाता था कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा। और पूछा कि हजरत आप कितना कमा रहे होंगे यहाँ मदरसे, तो हजरत ने कहा कि देखो मैं जो मदरसे में पढ़ाता हूँ यहाँ मैं 3 रुपये कमा रहा हूँ। अंदाजा लगाए 3 रुपये कमा रहे और पेशकश कर रहे 3 times 33 times more, 100 रुपये। लेकिन आगे उन्होंने फरमाया कि मैं 3 रुपये कमाता हूं, इसमें से जो 1 रुपये है ना, जो 2 रुपये है वो मैं अपने और अपने घर वालों पर खर्च कर देता हूं, 1 रुपया मेरा फिर भी बच जाता है, 3 रुपयों में से 2 रुपये खर्च होते हैं, 1 रुपया मेरा बच जाता है। अब उस रुपये को फिर मैं गरीब पीपल हुआ नीडी, आई नीड टू फाइंड सच पीपल एंड आई स्पेंड दैट 1 रुपी ऑन देम। अब तो मुझे 100 रुपये दोगे ना, मेरा खर्चा तो 2 ही रुपये होना है, बाकी जो 98 रुपीज है ना, जो लोगों को तलाश करना पड़ेगा कि कितने हैं जो गुरबा हैं पीपल और नीडी, मेरा तलाश करने में बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ हूँ बस मेरे लिए यही जगह काफ़ी है, 1 रुपये में खर्च कर देता हूँ, मैं वक्त अपना कीमती है, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उन्होंने उसके 100 रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया। ये होता है पैसों के अंदर बरकत। तब ये जवाब दिया ना तो दूसरा बंदा हैरान, पर्सन वाज स्पीचलेस कि मैं 100 रुपये दे रहा हूं और ये 100 रुपये को रद्द कर रहा है। आज हम इससे कोई होता वी आर बैगिंग 100 रुपीज कि भाई 3 रुपये के बजाय 100 रुपये मिल रहा है, वुड बी आफ्टर दैट मनी, वी वुड बैगिंग फॉर दैट मनी। लेकिन हमें वो 100 रुपये तो मिल जाते, शायद हमारी जो मसाइल है वो उससे हल नहीं होता है, दिल में इत्मीनान नहीं आता। यहाँ उन्होंने 100 रुपये को छोड़ा, वो 3 रुपये जो बरकत वाले थे उसको रखा, जरूरियात भी पूरी हो जाती, दिल में अल्लाह ताला इत्मीनान भी डाल देते। तो ये बुनियादी फर्क था हम में और मन में, कि वो जो लोग थे ना हमारे उनमें जो फर्क है ना, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था, पर सिर्फ ये था कि दे हैड तकवा, हमारे पास तकवा नहीं। उनके पास तकवा था तो कम उनके लिए काफी हो जाया करता था, हमारे पास चूंकि तकवा नहीं है तो ज्यादा भी हमारे लिए काफी नहीं होता। फर्क इतना है कि उनके पास चूंकि तकवा था, अल्लाह ताला उनके सारी प्रॉब्लम्स मसाइल को हल कर दिया करते थे, हमारे पास चूंकि तकवा नहीं है तो हमारे मसाइल हल नहीं होते देते, हालांकि हम इतनी कोशिश कर रहे होते। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुत्तकी थे, हम बगैर मुत्तकी हैं। ना सिर्फ अल्लाह ताला रिस्क में और पैसों में बरकत अता फरमा देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला इल्म के अंदर भी बरकत अता फरमा देते हैं। जो मुत्तकी होते हैं अल्लाह उनके इल्म में भी बरकत डाल देते हैं। अब देखिए ना कि आज हम मदरसे में जो किताबें पढ़ते हैं, हम वही किताबें पढ़ रहे होते हैं, शरह जामी, उसूल शाशी, रियाज़ुस सालिहीन, ये वही किताबें हैं जो हमारे अकाबरीन ने पढ़ी, शेख अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने भी ये किताबें पढ़ी, मौलाना कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह ने भी ये किताबें पढ़ी, जितने बड़े लोग हैं उनके नाम लेते चले जाए, सबने यही किताबें पढ़ी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वही हदीस मुबारका पढ़ते थे जो आज हमारे पास मौजूद है। वजह क्या है कि किताबें वही हम पढ़ रहे हैं जो हमारे अकाबरीन ने पढ़ी, लेकिन हमारे पास जो कैफियत होती है वो 1/20th भी वो कैफियत नहीं है जो हमारे बड़ों की कैफियत होती थी। बड़े जिस कैफियत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ पढ़ते थे, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत होती थी, उसका 1/20th भी हमारे पास नहीं होता, हालांकि किताबें तो वही हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो किताबें पढ़ते थे तकवा के साथ, अल्लाह तकवे की बुनियाद के ऊपर उसमें बरकत रख देते थे, उनके इल्म में बरकत डाल देते थे, उस इल्म में बरकत होती थी, अल्लाह अमल की तौफीक अता करते थे। और हम किताबें वही पढ़ते हैं लेकिन उनके जिंदगी में तकवा नहीं है, तो वो इल्म तो मिलता है लेकिन बरकत नहीं मिलती, इल्म का नूर नहीं मिलता, लिहाजा हमें अमल की तौफीक नहीं मिल पाती। वो इल्म पे जो कैफियात मिलनी चाहिए थी वो हमें कैफियात ही नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोग होते हैं ये कंप्लेन अबाउट देयर मेमोरी कि हमारा हाफिजा बड़ा कमजोर है, चाहे दुनिया हो चाहे दीन हो, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो गुनाहों का एक नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला हाफ़िज़े से बरकत को निकाल देते हैं। This is also loss of barakah in our memory। जब इंसान मुत्तकी होता है तो अल्लाह ताला ऐसा हाफ़िज़ा अता करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जब इस्लाम कबूल फरमाया तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, जवान नहीं थे, बुढ़ापे तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनको दिल में शौक था कि मैं हदीस मुबारक को याद करना चाहता हूँ। कोशिश करते थे, भूल जाते थे, कुछ याद करते थे, थोड़े दिनों के बाद भूल जाया करते थे, पर आखिर एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए और अर्ज किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हदीस मुबारक पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई, अपनी चादर उनको दी कि सीने से मल लो। वो फरमाते हैं कि मैंने वो चादर को अपने सीने के अंदर मला, मुझे यूं महसूस हुआ कि कुछ नूर है जो मेरे सीने के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद फिर ये हालत होती थी कि नबी अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक के इरशाद फरमाते थे और मेरे दिल में नक्श हो जाया करते थे। ऐसी मेमोरी हो गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल फरमाया तो उसके बाद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे मरवान, वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का इम्तिहान लेने के लिए आए। अब उम्र देखिए कितनी हो चुकी होगी, इम्तिहान लेने के लिए गवर्नर आता है और उनसे फरमाते हैं कि आप जो है मुझे नबी अलैहिस्सलाम की 100 अहादीस मुबारक सुनाए। और एक इस तरह का कर्टन होता है, उसके पीछे अपने बंदे को बैठा देता है उन इंस्ट्रक्शंस के, ये जो अहादीस मुबारक पढ़ेंगे ना आपको लिख लेनी है। और यहाँ से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि ऐसा मामला हुआ है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने 100 अहादीस मुबारक सनद और मतन के साथ तिलावत फरमा दी, ये मरवान वापस चला गया। एक साल के बाद दोबारा मदीने में नबी आते हैं और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से फरमाते हैं कि जो एक साल पहले आपने अहादीस मुबारक सुनाई थी ना, मुझे वो भी अहादीस मुबारक सुननी है, उसी ऑर्डर में सुननी है जिस ऑर्डर में आपने सुनाई थी। और पीछे उस बंदे को बुलाया और कहा कि ये तिलावत करेंगे, जरा चेक करना कि कितनी गलतियां करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक 100 की 100 अहादीस मुबारक सनद और मतन दोनों के दोनों उन्होंने सुना दी। वो बंदा फिर आखिर में इकरार करता है कि इसमें एक जेर जबर की भी गलती नहीं थी। अल्लाह ताला ऐसा हाफ़िज़ अता फरमा देते हैं। तो जब जिंदगी के अंदर तकवा होता है तो अल्लाह ताला फिर क्यों बरकतें अता फरमा। हज़रत अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनको कई अहादीस मुबारक याद थी। अब उनका एक शागिर्द था, उनसे बहुत मोहब्बत करता था। अब जब शागिर्द और उस्ताद के जो ताल्लुक होता है ये बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक होता है जो गैरमंद नहीं समझ सकता। तो एक दफा ये दर्स में देर हो गई, लंबा दर्स हो गया, तो जब मैं वापस गया तो उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, खाना भी पका के रखा हुआ था, तैयार थी। तो पूछा कि भाई क्यों देर हो गई आप आते हैं, उन्हें कहा दर्स था मेरे उस्ताद का। अब ये वैसे ही अपसेट थी और जब उसने उस्ताद का नाम सुना तो और अपसेट हो गई और आगे से उसने कह दिया कि भाई आपके उस्ताद को क्या आता है, कुछ भी तो नहीं आता। अब ये नौजवान इसको गुस्सा आ गया, बनाना भी चाहिए था कि भाई तुम्हें जो मामला मेरे साथ है मेरे उस्ताद को बीच में क्यों लेके आ रहा। तो उसको गुस्सा है कि मेरे उस्ताद का नाम क्यों बीच में लेके आए। ऐसा गुस्सा आया कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट उसने कह दिया कि अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख अहादीस मुबारक याद नहीं तो तुम्हें 3 तलाक है। अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख अहादीस मुबारक याद नहीं तो तुम्हें 3 तलाक है। अपवर्ड टेम्पल गुरुवार, तो दोनों मियाँ बीवी बैठे, आप सोच रहे हैं कि भाई तलाक हुई या ना हुई, बिकॉज कंडीशनल थी ना कि अगर उस्ताद को 1 लाख अहादीस मुबारक याद नहीं तो 3 तलाक है। तो उन्होंने तय किया कि चले सुबह जाके आप पूछेंगे उस्ताद से। चनाचे सुबह को ये शख्स जाता है हज़रत अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह के पास और सारा मामला सुनाता है कि हज़रत मुझसे ये गलती हो गई, अब आप ये बताएं कि हमारा निकाह टूट गया या बरकरार है। तो हज़रत अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं, कहते हैं जाओ मियाँ बीवी के तरीके से रहो, मुझे 1,00,000 अहादीस मुबारक इस तरीके से याद है जिस तरह तो रसूल फातिहा याद हो। अल्लाह ताला हाफिज़ में फिर ऐसी बरकतें अता फरमा देते हैं। ये बरकत कैसे आती है? ये जिंदगी के अंदर तकवा होता है। आज हमसे मुश्किल से चंद आयतें याद नहीं हो पाती, भूल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर तकवा नहीं है। तो पहला तरीका जिससे इंसान जिंदगी के अंदर बरकतें आती हैं वो है तकवा को इख्तियार करना। दूसरा अमल जिससे जिंदगी के अंदर बरकतें आती हैं वो है अल्लाह ताला को कसरत से जिक्र करना। अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करना। देखें, तीन चीजें हैं, एक अल्लाह ताला की जात, एक अल्लाह ताला की किताब और एक अल्लाह ताला का नाम, और तीनों चीजों में बरकतें हैं। अल्लाह ताला की जात में बरकतें हैं, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कि बरकत वाली वो जात है कि जिसके हाथों में मिल्कियत है, मुलुकियत है। तो अल्लाह की जात में बरकत है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तबारक अस्मु रब्बिक कि फुल ऑफ बरका इज द नेम ऑफ योर लॉर्ड। तो अल्लाह ताला के नाम के अंदर भी बरकत है। और तीसरी बात, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह कि कुरान से बरकत हासिल करो चूंकि ये अल्लाह ताला का कलाम। तो अल्लाह ताला की जात में भी बरकत है, नाम में भी बरकत है और कुरान में भी बरकत है। लिहाजा हम जो काम करें उससे पहले अल्लाह ताला को याद करा करें। हदीस मुबारका में आता है कि जब इंसान काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है अल्लाह उस काम में बरकत डाल देता है, और जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो वो फिर बिल्कुल कटा हुआ काम होता है, काम अधूरा रह जाता है, बरकत नहीं रहती। तो ये वैसे भी एक आदत है कि छोटा बड़ा काम होता है हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। सिर्फ खाना पीना नहीं है, कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो काम शुरू करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का जिक्र है ना, अल्लाह के जिक्र से उस काम में बरकतें आती हैं। जितना अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह ताला उतनी बरकतें अता फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला के नाम का जिक्र बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। और दूसरी बात यह है कि हम चलते फिरते भी अल्लाह ताला को याद रखें। जितना कसरत से अल्लाह ताला को याद रखेंगे उतना अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के अंदर दिन रात में बरकतें अता फरमा देंगे। जिक्र इज अ मैग्नेट which attracts barakat from Allah subhanahu wa ta'ala. और जब ये बरकतें आएंगी अल्लाह ताला की तरफ से तो फिर दिलों में इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा। अब इसकी दलील कुरान अजीम व शान। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा कि ए ईमान वालों, people of iman, remember Allah subhanahu wa ta'ala abundantly, kasrat ke saath Allah ta'ala ko yaad karo, remember Allah ta'ala abundantly, excessively. ab ye to aise hi hame karna chahiye ki har waqt Allah ta'ala ko yaad kare, Allah ta'ala ki yaad mein magan rahe. lekin phir aage dekhiye Allah ta'ala is pe kya kya inaamat ata farmate hain. फरमाया कि मुझे कसरत से याद करो وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور میری تسبیح بیان کرو صبح میں کچھ دیر اور شام میں کچھ دیر. یہ جو صبح شام تسبیح کہتے ہیں اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ صبح شام میری تسبیح بیان کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، کہ اللہ تعالیٰ صلوات نازل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی صلوات یعنی رحمتیں نازل فرمائیں گے ایسے شخص کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، صبح شام تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اس پہ رحمتیں نازل فرمائیں گے. یہ وہی لفظ ہے یصلی جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہی لفظ اللہ تعالیٰ یہاں استعمال فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر صلوات رحمتیں برکتیں ہاتھ رکھیں، برکتیں نازل فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ کیوں رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلمتوں سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں برکت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ظلمتوں سے نکال دیتے ہیں، نور ایمان نور اطمینان اللہ عطا کر دیتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومن کے ساتھ بہت رحیم اور کریم ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، پھر آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ قیامت جب ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرمائیں گے، یعنی ان کے لیے یوم ملاقات کا دن ہوگا، یوم لقاء کا دن ہوگا. اس دن کی ابتدا اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرمائیں گے، وَعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے خوب زبردست اجر تیار کیا ہوگا جنت کے اندر. تو یہ ساری نعمتیں انسان کو کب ملتی ہیں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. So this one passage is enough for us to understand the importance of zikr. کہ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے. تو یہ برکتوں کا نسخہ ہے، تو جتنا استعمال کرے وہ اتنا اس کا مزہ پائے گا. ہمارے مشائخ تو کہتے ہیں ہر وقت ہی اللہ کو یاد رکھا کرو تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے. جب ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہر لمحے آ رہی ہوں گی. ہمارے مشائخ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ اگر ایک دم غفلت میں گزر گیا تو ایسے جیسے انسان نے وہ وقت ضائع کر دیا. اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا عین سنت ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے. یہ جو مصنوع دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہی تو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی کیفیت ہوتی تھی کھاتے وقت، اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے، دعا پڑھتے تھے، کپڑے اتارتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے. چنانچہ وہ جو دل کی یاد تھی وہ زبان پر آ جایا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ لیا کرتے تھے. ہمیں جو ہے اس کو بیکورڈ، وی ہیو ٹو ورک دس پروسیس بیکورڈ. ہمارے دلوں میں یاد نہیں ہوتی، ہم ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ پڑھیں گے، مسنون دعاؤں کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں گے کہ اللہ ان کی جو حقیقت ہے، جو ذکر ہے، वो मेरे दिल के अंदर उतार दीजिए, ताकि मेरा दिल भी जाकिर हो जाए, दिल में अल्लाह ताला का ख्याल आ जाए, दिल में अल्लाह ताला की याद आ जाए। तो ये बेहतरीन तरीका है बरकतों को हासिल करने का कि जो मसनू दुआएं हैं उनका एहतमाम करें। दिन के अंदर कितने ऐसे आमाल होते हैं जिनसे इनके बारे में मसनू दुआएं हैं, उन दुआओं को पढ़ें, समझें और उन दुआओं के जरिए अल्लाह को याद करें। अल्लाह ताला दिन के अंदर पूरे दिन में बरकतें अता फरमाते हैं, पूरा दिन बरकतों से भर जाए। ये जबरदस्त तरीका है बरकतों को अपनी तरफ खींचने के लिए कि इंसान दिन भर के जो आमाल है सुन्नत के मुताबिक करे और मसनू दुआओं पढ़ने का एहतमाम करे। और एक तीसरा तरीका जिससे बरकत अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं वो ये है कि जो उलमा हैं, मशायख हैं, अकाबरीन हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अहलुल्लाह नेक लोग हैं, उनकी सोहबत को इख्तियार करना। The company of those who are close to Allah Ta'ala, the company of scholars and mashayikh and our elders. इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बरकतु मा अकाबिरुकुम, के बरकत है अपने बड़ों के साथ रहने में। बरकत अपने बड़ों के साथ रहने के अंदर है कि बड़ों का साया सर पे होगा, अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत अता फरमा देंगे। और जहां ये हम सोचे कि मैं बड़ा हो गया और अब मुझे बड़ों का साये की जरूरत नहीं है, मैं काम करूंगा और मैं ये करूंगा और मैं ये बनाऊंगा, तो जहां ये मैं आ जाती है फिर बरकत खत्म हो जाती है। बरकत मेरे काम में नहीं है, मेरे बड़े होने में नहीं है, बरकत बड़ों के साये के नीचे काम करने में। काम छोटे करते हैं लेकिन छोटों के काम में बरकत बड़ों के साये की वजह से आती है। ये भी बात याद रखें। कभी कभार शैतान जहन में बात डालेगा कि भाई काम तो सारा मैं कर रहा हूं, ये बड़ों का नाम क्यों आ गया? हाँ, नाम तो उनका आ रहे, काम उनसे करवा रहे। आता है ना शैतान की वसवसा डालता है। तो इसका जवाब याद रखें, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अभी बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो असल मुशक्कत का काम है ना वो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। लेकिन कुरान में जब अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि घर को कौन बना रहे, وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे घर की तामीर फरमाई, तामीर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, लेकिन बड़ों का नाम आता है। यानी कुरान में अल्लाह ताला ने हमें अदब सिखा दिया कि काम छोटे करेंगे लेकिन बड़ों के साये में करेंगे, क्योंकि नाम बड़ों का आता है। क्यों? अल बरकतु मा अकाबिरुकुम, छोटे ये ना सोचें कि भाई काम मैं कर रहा हूं, भाई काम तो आप कर रहे हैं लेकिन उस काम में जो बरकत है वो बड़ों के साये की वजह से आ रही है, उनके दुआओं की वजह से आ रही है, उनके साथ जो आप जुड़े हुए हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन जो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो तवज्जोहात है, उसकी वजह से आपके काम में बरकत आ रही है। और इंसान अगर कट जाए बड़ों से तो फिर बहुत महरूमी की बात होती है, महरूमी की बात होती है कि फिर इंसान बरकतों से भी महरूम हो जाता है और इंसान उजब और तकब्बुर का शिकार भी हो जाता है। इंसान बरकतों से भी महरूम हो जाता है और उजब तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, फिर सोचने लगता है कि बस मैंने ये किया, मैंने वो किया, और शैतान के पंजे के अंदर फंस जाता है। लिहाजा कभी भी अपने आप को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि हम अपने बड़ों के साए से महरूम हो जाएं। आफियत और बरकत छोटे रहने में, हमेशा अपने आप को इंसान डिपेंडेंट समझे कि मुझे अपने बड़ों की दुआओं की जरूरत है, उनके तवज्जोहात की जरूरत है, उनके साए में रह के काम करना है, तो फिर काम में बरकत होगी, कबूलियत होगी। जहां मैंने खुद अपने आप को कोई कदम बढ़ाया कि मैं ये करता हूं, वहां फिर बरकतें खत्म हो जाती हैं, इंसान तकब्बुर का मरीज बन जाता है। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम जिस जमाने में रह रहे ना, वो सेलिब्रिटीज का जमाना है। सोशल मीडिया के अंदर हर दूसरा बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है और हर बंदा चाहता है कि बस इंडिविजुअलिज्म, कि बस मैं हूं और कोई नहीं हूं, और हर बंदा बस अपने आप को ही आगे कर रहा होता है। कोई छोटा बंदा नहीं चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं कि बस मैं ही बड़ा हूं, और अपने उस्तादों से, अपने मशाइख से, अपने अकाबरीन से वो जो रिश्ता है वो फिर कमजोर होता चला जाता है। ये शैतान की बहुत एक बड़ा खतरनाक वार होता है कि वो तरह तरह की बदगुमानियों में मुब्तला करके अपने अकाबरीन से जो ताल्लुक होता है उसको कमजोर करता चला जाता है। उसको पता होता है कि जब तक बड़ों से ताल्लुक है तो ये अमन में होगा, बरकतों में होगा, आफियत के साथ होगा। पहले इस ताल्लुक को मुझे कमजोर करना है, और कमजोर करने के लिए उसका हथियार बदगुमानी होती। सुबह जान कोई ना कोई बात डाल देगा, कोई वसवसा डाल देगा ताकि इंसान का ताल्लुक थोड़ा पहले से कमजोर हो जाए, और जितना कमजोर होता चला जाएगा उसका काम फिर आसान होता चला जाता है। अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें बड़ों के साए के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पूरी जिंदगी मरते दम तक हमारे ऊपर किसी का साया रहे, कोई रोक टोक कर सके, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। रोक टोक से घबराना नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है कि कोई ऐसा बंदा मौजूद हो जो रोक टोक कर सके, इंसान की इस्लाह का मौका दरवाजा खुला होता है। उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन से कोई रोक टोक करने वाला ना हो, क्योंकि अब इस्लाह का एक बड़ा दरवाजा बंद हो चुका। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मस्जिद में थे, किसी को कुछ पैसे दे रहे थे, कोई चीज ली थी तो उसका पैसा दे, पैसे वापस कर रहे थे, कुछ चीज खरीदी थी। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे उनका खादिम बैठे हुए थे, तो खादिम ने कहा कि हजरत लगता है कि मस्जिद के अंदर आप कारोबार कर रहे हैं। हजरत लगता है कि मस्जिद के अंदर आज आप कारोबार कर रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि नहीं नहीं उठे मस्जिद के बाहर तशरीफ लेकर जो पैसे लेन देन करना था ना मस्जिद के बाहर किया, फिर आके अंदर बैठ गए। जब अंदर तशरीफ लाए तो उनकी एक और उसी मजलिस में एक और साथी थे, उन्होंने कहा हजरत ये कोई कारोबार थोड़ी था, ये तो आप पैसे ले रहे थे, उससे चीज दे रहे थे, इसको कारोबार थोड़ी कहता, ये तो मस्जिद में जायज है, ये तो फुकी फिकी मसला है, ये तो मस्जिद के अंदर बिल्कुल करना जायज है। आप खामा खामे बाहर तशरीफ लेके गए, क्यों ज़हमत हुई आपको? हजरत ने फरमाया कि भाई इतना आलम तो मैं भी हूं, मुझे भी पता है कि जो मैं कर रहा था ये जायज है, लेकिन बात दरअसल ये थी कि अगर मैं अपने खादिम को टोक देता ना तो आइंदा वो मुझे कभी मेरी इस्लाह नहीं करता। मुझे डर इस बात का था कि अगर मैं इसको आज टोक दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आइंदा कोई चीज देखे और रोक टोक मेरी ना करे, और अगर मैं ऐसा करता तो ये बहुत बड़ी मालूमी की बात होती,
میری اصلاح کا ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر.
یہ بڑے لوگ کتنے بڑے ہوا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ کوئی غلط معاملے پہ ان کو ڈانٹ رہا ہو تو اس کو بھی کچھ کہتے نہیں تھے کہ بھائی یہ دروازہ کھلا رہے, جس کو روک ٹوک کرنی ہے ہماری کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اصلاح کا پہلو ہو. اور آج ہم اپنا حال دیکھیں, ایسے گھبراتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایک دو باتیں سمجھا دی, اسی کو اس دشمن سمجھ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا. I will make dua for that person who presents to me the gift of my imperfections. آج ہم کسی سے اس کے ایک عیب یا ایک کمی, کوئی کمزوری کی بات کرے تو وہ بندہ آگے سے پتنی کیا کچھ ہمیں سنا دے کہ بھائی آپ اپنے سے کام سے کام رکھیں, آپ کون ہوتے ہیں کہ دوسرے کے معاملے کے اندر دخل کر رہے ہیں. اور یہاں سے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں دعا کروں گا اس بندے کے لیے جو مجھے میرے عیوب کا تحفہ, لفظ دیکھے, لفظ کا چناؤ دیکھے, جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے لا کے دے گا. اس کو تحفہ ہدیہ سمجھتے تھے. ہدیہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھائی پیسے دے دیے, مٹھائی دے دی, تر دے دیا. صحابہ کرام اس کو بھی ہدیہ سمجھتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے اور مجھے میری کمی میری کمزوری بتا رہا ہے, مجھے اصلاح کا موقع مل رہا ہے. تو لہذا البرکت مع اکابرکم, برکت جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ رہنے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے, خدمت کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نتیجہ کیا ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برکت کی دعا دی. یہ ہوتا ہے خدمت سے, صحبت سے بڑوں کی دعائیں ملتی ہیں, اور ان دعاؤں سے پھر ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. زندگی کی ساری کوششیں کر لے تو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں, آپ کی عمر میں اور آپ کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں, رزق میں, اولاد میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی برکت عطا فرمائی کہ اتنی لمبی عمر عطا فرمائی, اتنی لمبی عمر عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے 140 گرینڈ چلڈرن کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا. اولاد میں بھی برکت ہو گئی اور عمر میں بھی ایسی برکت ہو گئی. آج ماشاءاللہ آپ 4 شادیاں بھی کر لیں, کتنے بچے ہوں گے اور ان کے پھر کتنے بچے ہوں گے. 140 یعنی پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں میں نے اپنی زندگی کے اندر خود دیکھ لی. تو عمر بھی کتنی لمبی عطا فرمائی, برکت عطا کر دی, اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرماتی. اور تیسری چیز وہ فرماتے تھے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی برکت عطا فرمائی, اتنا رزق تھا, اتنا سونا تھا کہ سونے کو کاٹنے کے لیے مجھے باقاعدہ ایک سو کو کیا کہتے ہو تمہیں, آڑی, مجھے آڑی چاہیے ہوتی تھی کہ میں سونے کو کاٹ کاٹ کے اپنے پاس رکھ سکوں. یعنی یہ تولے کی بات نہیں ہو رہی, یہ بارز کی بات بھی نہیں ہو رہی, یہ باقاعدہ بڑی بڑی اینٹوں کی بات ہو رہی ہے. سونے کی اینٹیں ہوا کرتی تھی میرے پاس, ان کو کاٹنے کے لیے مجھے آڑی چاہیے ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کھلا رزق عطا فرمایا تھا. یہ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحبت میں گزارے. پھر اللہ نے یہ برکتیں عطا کری, اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا فرمائیں. ویسے بھی انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک دنیا اور ایک دین. جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے, اور جو شخص اپنے دین کے اساتذہ مشائخ کی خدمت اور صحبت میں رہتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کے دین میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو ایک طرف والدین اور دوسری طرف مشائخ, ان سے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی برکتیں نصیب فرما دیتا ہے. تو لہذا البرکتو مع اکابرکم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تین عبداللہ تھے, تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, خدمت میں آگے آگے, صحبت میں آگے آگے, محبت میں آگے آگے. تینوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کے لیے, تینوں کے نام عبداللہ تھے, ان تینوں کے لیے تہجد میں پھر دعا مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو تینوں عبداللہ تھے آگے جا کے اپنی اپنی فیلڈ کے امام بن گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کو امام المحدثین بنا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ نے امام المفسرین بنا دیا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امام الفقہا بنا دیا. یہ ایسا مرتبہ عطا کر دیا. یہ کیسے مرتبہ ملا؟ اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے نہیں ملا, یہ خدمت کی وجہ سے اور صحبت کی وجہ سے, اور وہ جو دعائیں ملی ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا. تو برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ اچھی رہے, جڑا رہے, اس تعلق کو مضبوط سے عزبت بنانے کی کوشش کرے, اس میں کوئی کمزوری آنے نہ دے. اور ایک آخری طریقہ برکت کو اپنی طرف کھینچنے کا, وہ ہے اللہ سے دعا کرنا. اللہ سے اخلاص کے ساتھ with sincerity to make دعا to اللہ تعالیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ہمیں برکت حاصل کرنے کی دعائیں سکھلائی ہیں. ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو کھانے کی کیا دعا ہوتی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. دعا بھی پڑھیں اور کوشش کریں ساتھ مل کر کھائیں, کیونکہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جب جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں. اکیلے کھانے میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی جماعت کے ساتھ مل کر کھانے کے اندر ہے. پھر جب کھانا دسترخوان پہ رکھا جائے تو دعا مانگی جاتی ہے, اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ. پھر اسی طریقے سے دودھ پینے کی دعا ہوتی ہے, دودھ پینے کی دعا, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہاں بھی دیکھیں برکت ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پھل یا فروٹ ہوتا تھا, the first fruit of the season, تو اس کو کھانے سے پہلے بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا, اللہم بارک لنا فی ثمرنا, کہ اللہ ہمارے پھلوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. फिर वो फल जो महफिल के अंदर सबसे छोटा बच्चा होता था उसको दे देते थे कि आप खाओ, तो फलों के अंदर थे। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दूसरे को सलाम किया करो, अफशुस्सलाम बैनकुम, सलाम करने से भी दूसरे बंदे को बरकतें मिलती। लेकिन मुकम्मल सलाम हम अधूरा सलाम करते हैं। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया, उसने किसी को सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आशा दस ने किए। दूसरा बंदा आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फरमाया इशरीन बीस ने किया। तीसरा आया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहु, सलासीन तीस ने किया। तो पूरा सलाम करने से नेकियां भी ज्यादा मिलती हैं, और अफशुस्सलाम बैनकुम सलामती को फैलाओ, ये दुआ है। इंसान दूसरे बंदे को बरकतों की दुआ दे, तो ये सलाम तो खूब करना चाहिए। घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करें, उससे घर में बरकतें आती, रिस्क में इजाफा होता है। इंसान जब ऑफिस की तरफ जा रहा हो तो घर छोड़ते वक्त फिर सब घर वालों को सलाम करें, और रास्ते में जितने लोग मिले सलाम की आदत होनी चाहिए। इससे बरकतें मिलती हैं, इससे सलामती फैलती है, इससे अल्लाह ताला घरों में घर के अंदर रिस्क में बरकतें अता फरमाते हैं। फिर वजू करते वक्त दुआ है अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा वफिल्ली अल्लाहुम्मा वफिल्ली जंबी वसेली फी दारी वबारकली फी रिज़्की। तो इससे कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे घर को कुशादा कर दे, मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा दे। इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और एक दुआ तो बड़ी अजीब है, हदीस मुबारका में आता है कि जो ये दुआ रोजाना 25 दफा पढ़ ले, जो ये दुआ रोजाना 25 दफा पढ़ ले, फिर जब उसको मौत आएगी अल्लाह ताला उसको शुहदा का मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह विल गिव हिम द रैंक ऑफ अ शहीद। ये रियल बरकत है। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत वफीमा बादल मौत। या अल्लाह मुझे मौत में बरकत अता फरमा, वफीमा बादल मौत और मौत के बाद जितने अहवाल हैं अल्लाह उनमें भी मुझे बरकत अता फरमा। उसूरी दुआ मांग ली कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अल्लाह मुझे मौत के वक्त बरकत अता फरमा दे और मौत के बाद जितने मामलात होने अल्लाह सब में बरकत अता फरमा दे। जो रोजाना इस दुआ को 25 दफा पढ़ता है फिर जब उसका इंतकाल होगा अल्लाह ताला उसको शुहदा की सफ में खड़ा फरमा देंगे। इसको कहते हैं बरकत। हमने अपने दोस्तों को ये दुआ बताई और इसकी अजीब और गरीब बरकतें हमने खुद अपनी आंखों से देखी, लोगों ने आके बताई। हमारे यूएस के एक साथी थे, उनके वालिद इस्लामाबाद में रहते थे, मियां बीबी थे यूएस में और वालिद यहाँ रहते थे इस्लामाबाद में। उनका बिल्कुल आखिरी वक्त था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि यह किसी वक्त भी इनका इंतकाल हो जाएगा, अब जल्दी आ जाए। तो मियाँ बीवी उनके तीन बच्चे थे, उन्होंने बच्चों को वहीं छोड़ा अपने रिश्तेदारों के पास और फ्लाइट करके वो यहाँ आ गए। तो वो जो बीवी थी, दोनों का ताल्लुक है आजिज के साथ, वो कह रहे थे कि हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी वालिद साहब की जो कंडीशन है वो बिल्कुल कोमा में चले गए और कोई सेंसेशन नहीं है, तो आप बताएं क्या करना चाहिए। मैंने कहा
ہے کہ ہم نے بڑوں سے یہ دعا سیکھی ہے سنت کے اندر کہ دعا پڑھ لیں اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت, اور اگر وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے آپ ان کی بیعت پہ پڑھ لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ میں ان کی بیعت پہ پڑھ رہی ہوں. اللہم بارک لی فی موت, اللہم بارک لی فی الموت, تو آپ پڑھ لیں اللہم بارک لی ابی فی الموت وفی ما بعد الموت, تھوڑا بدل کے پڑھ لیں کہ اللہ میرے والد کو موت میں برکت عطا فرما دے موت کے بعد. کہتے ہیں میں نے پورا سفر یو ایس سے اسلام آباد فلائٹ میں بس یہی دعا کا ویٹ کرتی رہی, پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی. ہم فوراً یہاں لینڈ ہوئے, ہاسپٹل گئے, وہاں پہلے مائی ہسبینڈ وینٹ انسائڈ, انہوں نے دیکھا اور آ کے مجھے بتایا کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ڈاکٹر تھے, یو ایس کے اندر پریکٹسنگ فزیشین. تو فزیشین تو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا کہ کیا سچویشن ہے. تو انہوں نے آ کے اپنی وائف سے کہا کہ بھائی آخری وقت ہے, کوئی کوما میں جا چکے ہیں, لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, تو کچھ ہو نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتے. کہتی میں گئی اور میں نے دیکھا کہ بالکل پیرالیسس کچھ نہیں, آنکھیں بند سب کچھ, کوئی موومنٹ نہیں. کہتی ہے میں بس یہ دعا پڑھتی رہی پڑھتی رہی. وقت ان کا تھا لکھا موت کا, اس کو تو تقدیر نہیں بدل سکتی, لیکن فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ ضرور ہوا کہ میں جب یہ دعا پڑھتی رہی نا تو پھر مجھے دیکھا کہ ان میں حرکت کے کچھ آثار نظر آنا شروع ہوئے, اور میں نے دیکھا ان کا باقاعدہ جو ہونٹ ہیں وہ ہل رہے ہیں, اور ہونٹوں کے اندر زبان تھی وہ ہل رہی تھی. اور میں نے کان قریب لایا تو میں نے سنا, میں سنتی ہوں کہ وہ کلمہ انہوں نے ورد کرنا شروع کیا, جیسے کلمہ پڑھ, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح پرواز کر گئی. کہتی ہے میں اس کمرے کے اندر تھی, میں نے باہر جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, وہ کہتے ہیں یہ تو میڈیکل کے اندر دس از ان امپاسبلٹی ان میڈیکل سائنس فار ا پرسن آف دیٹ لیول ٹو بی ایبل ٹو موو دیئر لپس, دس از اے میڈیکل امپاسبلٹی, یہ ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو اس کو برکت کہتے ہیں کہ انسان خود بھی ورد کرے اور اپنی آنکھوں سے اس کی برکتوں کو دیکھے گا. مشکل دعا نہیں ہے, اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, اللہ مجھے میری موت میں برکت عطا فرما اور موت کے بعد برکت عطا فرما. ایک بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے یہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں, اسی طریقے سے ایک دو چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیتے ہیں. تو جہاں ان اعمال کو بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں اس سے زیادہ اہمیت یہ بات ہے کہ ہم ان اعمال سے بچیں جن سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. برکتیں کس سے ختم ہوتی ہیں؟ جب انسان کی نیت کے اندر فتور آ جاتا ہے, جب انسان کی نیت میں کھوٹ آتا ہے, نیت کے اندر ملاوٹ آتی ہے, جب نیت میں کوئی ڈاؤٹ آ جائے نا, ایمبیگوٹی آ جائے, نیت میں کچھ کنفیوژن آ جائے, تو اس سے برکت نکل جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ایک عمل نیک عمل ہوتا ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ شروع کر رہا ہوتا ہے اور پھر بیچ عمل کے اندر اپنی نیت اس کی بدل جاتی ہے. جو ہی اس کی نیت بدلتی ہے اس عمل سے برکت نکل جاتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو اچھا خاصے نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, پیپل آر ریلیجیس, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم علم پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عمل شروع کے اندر اللہ کی نیت ہوتی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے, لیکن عمل کے بیچ میں نیت بدل جاتی ہے کہ لوگ مجھے کچھ کہنا شروع کر دیں, میرا پڑھانا
गाना शुरू कर दूं, मैं बड़ा बन जाऊं, लोग मेरी वाह वाह करें, मेरे अपने शागिर्द हों, मैं उस्ताद बन जाऊं, नीयत बदल जाती है। जब नीयत बदल जाती है तो फिर इल्म में पढ़ पढ़ कर निकल जाते हैं। एक और मिसाल मैं दूं कि लोग पैसे खर्च करते हैं कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हैं, शुरू में अमल अच्छी नीयत के साथ कर रहे होते हैं, फिर नीयत बदलती है कि मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च भी कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बदले लोग मेरे साथ थोड़ा मामला भी बेहतर करें, कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं ना। तो यू आर नाउ डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ अदर पीपल एज वेल, to gain a respect in the eyes of other people as well. You're doing it for ostentation, for riya, show off, for name, for fame, for reputation, for izzat. So, barkat nikal jati hai. Kabhi kabhar insaan bayan kar raha hota hai ki main falan jagah ja raha hu, aur phir hota hai ki wahan ja ke main zara sightseeing bhi kar lunga, niyat badal gayi. अब नियत बदल जाती है तो फिर इंसान अल्लाह ताला बरकत निकाल देता है। तो नियत हमेशा इंसान एक ही रखनी चाहिए। जहां नियत में एम्बिग्विटी आती है उससे काम में खराबी आ जाती है, बरकत निकल जाती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने एक आयत लिखी है, एक बादशाह था, वो उसके शहर में किसी का अनार का बाग था, तो वहां जाते एक दफा और जो ओनर होते हैं बाग के उससे कहते हैं कि भाई मुझे जरा अपने बाग के अनार तो खिलाओ, अनार का जूस तो पिलाओ। तो जो मालिक होता है बाग का वो फौरन एक अनार तोड़ता है, उसको दबाता है, उससे जो शरबत निकलता है बादशाह को पेश करता है। एक अनार से पूरा ग्लास शरबत का भर गया, बादशाह को पेश किया, बादशाह ने दिया तो उसको बड़ा मजा लगा, बड़ा मीठा शीरी मजे का। उसने कहा भी मुझे दूसरा ग्लास भी पिला, तो उसने एक और अनार तोड़ा, उसको दबाया, दूसरा ग्लास भर गया, बादशाह को दिया, बादशाह ने दिया, उसको बड़ा मजा आया, जबरदस्त मीठा। अब दो बार पी लिया ना, अब उसके दर्शक के ख्याल दिल में ख्याल आया कि यार ये तो बाग मैं ही खरीद लेता हूं, इस पर तो टैक्स लगाना चाहिए, इतना अच्छा बाग है, इतना अच्छे फल आ रहे, तो इस पर तो मुझे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर कहा कि अच्छा जरा एक और ग्लास तो पिलाओ। अब जब ग्लास पिलाया तो उसने एक अनार तोड़ा, उसे थोड़ा थोड़ा सा देना ग्लास भर, फिर दूसरा तोड़ा, उसे थोड़ा सा और भर, फिर तीसरा तोड़ा, फिर जाके फाइनली वो ग्लास भरा। बादशाह ने पिया तो कहा कि अभी बड़ा अजीब सा खट्टा सा। तो बादशाह ने कहा भाई ये क्या हुआ कि पहले तो एक अनार के अंदर पूरा ग्लास भर गया, वो भी इतना मीठा, यहाँ तीन अनार से बड़ी मुश्किलों से ग्लास भरता है, वो जायका भी इतना खराब। तो जो बाग का मालिक था, कलवंत था, साहिब फिरासत था, उसने कहा बादशाह बाग तो वही है, अनार भी वही है, लगता है कि किसी की नीयत बदल गई है। बाग तो वही था, लगता है किसी की नीयत बदल गई है। फिर बादशाह ने भी अपने दिल के अंदर तौबा किया तो फिर मामला ठीक हो गया। तो ये बरकत है, अच्छी नीयत होगी अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, अच्छी नीयतों से हमेशा अल्लाह ताला की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है, अल्लाह की तरफ से बरकतें आती है। एक हदीस मुबारका में आता है कि जिसकी अच्छी नीयत हो, तीन चीजों के बारे में इरादा करे अच्छी नीयत के साथ, अल्लाह ताला अपनी मदद शामिल हाल फरमाए। पहली चीज कोई मस्जिद बनाने की नीयत करें इखलास के साथ, अल्लाह ताला मदद शामिल हाल फरमाएंगे। दूसरा कोई किसी पे रुखसती के अंदर पैसे खर्च करें, किसी को शादी निकाह के अंदर करवाना चाहे, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा देते हैं, मदद फरमाते हैं। और तीसरा, कोई गुनाहों से तौबा करने की नीयत करे, अच्छी नीयत है ना गुनाह छोड़ने की, तो अल्लाह ताला अपनी मदद शामिल हाल फरमाते हैं। तो लिहाजा नीयत में जब खोट होता है ना, इससे बरकतें निकल जाती हैं। और दूसरी चीज जिससे बरकतें निकलती हैं वो है बदनजरी। ये बड़ा आम गुनाह है, जहां नजर, when you misdirect your gaze, that also sucks away the barakah। किताबों में वाकिया लिखा है, हमने अपने हजरत से कई दफा सुना है कि एक मुअज्जिन था, कुरान का हाफिज था, एक दफा मीनार के ऊपर चढ़ा अजान देने के लिए, उसकी नजर बराबर में किसी औरत पे, गैर महरम पे पड़ी और दिल में गलत ख्याल और गलत जज्बा आने लगा, गलत ख्वाहिश पैदा हुई उस औरत के लिए, वो ऊपर से मीनार से नीचे उतरा, जो कुरान उसको याद था सारा कुरान भूल गया। ये ऐसी नहुसत होती है, अल्लाह अकबर, पूरा कुरान सीने से निकल जाता है। अल्लाह ताला की गैरत का मामला होता है, अल्लाह को यूं है, अल्लाह ताला नहीं पसंद फरमाते कि वो जो मोहब्बत की नजर जो अल्लाह ताला के लिए खास होनी चाहिए थी वो इंसान किसी गैर के ऊपर लगा रहे और शरीयत के दायरे के बाहर होकर लगा रहे। अल्लाह ताला की जो गैरत है वो जोश में आ जाती है। और आज ये गुना बहुत वेरी कॉमन, बहुत आम है। ये जो स्क्रीन हैं, फोन्स हैं, 100 में से शायद ही कोई एक बंदा हो जो इन गुनाहों से बचता। इसी तरह से बरकतों पे, जो बरकतों के दरवाजे हैं उनके ताले हमने खुद लगाए। ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह गुनाह करते रहें और कोशिश करें कि बस बरकत भी आ जाए। अगर बरकत चाहते हैं तो इन गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, इन चीजों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी आंखों को पाक करना पड़ेगा। निगाहों को पाक करना पड़ेगा, जी एक दफा फरमा रहे थे मायूम शेख। कई लोग आते हैं पूछते हैं कि हजरत हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, आपको हमें नुस्खा बताएं। उनके नेक लोग होते हैं जिनमें तलब भी होती है, तड़प भी होती है, तहज्जुद गुजार होते हैं, लेकिन अरसा गुजर जाता है और उनको ये सआदत नसीब नहीं होती। तो हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि इसकी बुनियादी वजह दो वजूहात हैं, बुनियादी दो वजूहात हैं। एक, इंसान की निगाहें पाक नहीं होती, दूसरा इंसान का पेट रिस्क पाक नहीं होता। जो इन दो चीजों में मेहनत कर ले, अपनी निगाहों को पाक कर ले, अपने रिस्क यानी हराम से बच जाए, फिर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला की ख्वाब ज़ियारत नसीब फरमा देते हैं। आम तौर पे जो दीनदार लोगों का मसला होता है, जो चाहते हैं कि ज़ियारत नसीब हो लेकिन नहीं नसीब हो रही होती, उसकी वजह ये होती है कि आंखें पाक नहीं होती, आंखें पाक नहीं होती, इस वजह से महरूमी होती है। और जब इंसान आंखों को पाक कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला कैसी बरकत अता फरमाते हैं। हमारे हजरत जी ने अपना वाकया सुनाया, कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत वाला मामला किया कि एक दफा मेरे अपने शेख वो मुझकी मेरी तरफ देख के मेरी तरफ इशारा करके फरमा रहे थे कि देखो ये जो नौजवान है ना, इसको जिंदगी में 30 साल की उम्र से पहले पहले 100 दफा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब। 30 साल की उम्र से पहले पहले 100 दफा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई। तो ये कब होता है? जब इंसान की निगाहें पाक होती हैं। इस पे इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला ये हालात हमें भी अता फरमा सकते हैं, लेकिन इस पे इंसान को खूब मेहनत करनी पड़ती है कि کہ انسان آنکھوں سے گناہ نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. گناہوں سے برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تالے لگ جاتے ہیں. جو سلوشن ہے نا ہماری زندگی کے مسائل کا, ہر بندہ مسائل کا بس ہے. یہ پاکستان نہیں مسائلستان ہے, مسائل ہی مسائل. مسائل کا جو حل ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ میں ایک کو دس بنا لوں اور دس کو سو بنا لوں. مسائل کا حل اس میں ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں تاکہ میری زندگی کے اندر برکتیں آ جائیں. جب برکتیں آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی مارنے کو بہت کر دیں گے, اسے تھوڑے کو بھی مارنے کافی کر دیں گے. وہ جو ایک ہے نا ہمارے لیے وہ بھی کافی ہو جائے گا, اس میں بھی بچے گا. اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ ایک کے بدلے سو بھی دے سکتے ہیں, اللہ اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں, کثرت بھی دے سکتے ہیں اور برکتوں کے ساتھ وہ کثرت ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت برکت والی نصیب فرمائے اور ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ ہمیں برکت سے اپنی نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.